आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य से शुरुआत करने वाले हैं। मतलब जरा सोचिए, रात के 8 बजे हैं और एक गायिका स्टेज पर है। उनका स्लॉट वैसे तो सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन गाते गाते ना 4 घंटे बीत चुके हैं।
बाप रे, 4 घंटे लगातार।
हाँ, और हैरानी की बात ये है कि उन्हें काफी शारीरिक दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और वो रात के 10:30 बजे ही स्टेज से उतरी।
असल में ना, ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं है, ये महज एक स्टेज शो से कहीं आगे की बात है।
बिल्कुल,
मैं कहूंगा कि ये एक कलाकार का अपने काम के प्रति वो गहरा समर्पण है जिसे हम कमिटमेंट कहते हैं।
सही बात है, और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम आज गायिका तनुश्री मिश्रा की इसी सांगीतिक यात्रा को समझेंगे।
जी, हमारी स्रोत सामग्री के जरिए हम उनके इसी गहरे समर्पण और कला के प्रति उनके नजरिए को थोड़ा और करीब से देखेंगे।
तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। मैं सोच रही थी कि ये जो असीमित ऊर्जा है, मतलब दर्द के बावजूद गाते रहने का जो जज्बा है, ये आखिर आता कहाँ से है?
इसका बहुत बड़ा श्रेय बनारस को जाता है। स्रोत सामग्री से पता चलता है कि इसका जवाब बनारस की हवाओं और गजल के साथ उनके व्यक्तिगत जुड़ाव में है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा था, एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई थी कि अगर उनका दिन खराब हो या किसी से बहस हो जाए तो वो क्या करती हैं?
वो 2 घंटे हारमोनियम लेकर गजल गाती हैं।
बिल्कुल, मतलब ये बहुत अनोखा है।
और यहीं पर गजल सिर्फ एक गायकी की शैली नहीं रह जाती, वो भावनाओं को संभालने का एक बेहद कारगर टूल बन जाती है।
लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ असलियत से भागने का एक तरीका नहीं है? मतलब बहस हुई और आप कमरे में बंद होके गाने लगे?
नहीं, इसे भागना तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। दरअसल इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है।
अच्छा?
हाँ, जब वो हारमोनियम पर सुर लगाती हैं तो वो एक खास रिदम और ब्रीदिंग पैटर्न पर फोकस कर रही होती हैं।
सांसों का तालमेल।
बिल्कुल,
शास्त्रीय संगीत का राग और गजल के शब्दों की गहराई ना दिमाग के शोर को शांत करती है। ये खुद को हील करने का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है।
यानी ये एक तरह से इमोशनल रीबूट बटन की तरह काम करता है।
एकदम सही शब्द चुना आपने।
इससे ये बात भी समझ आती है कि कला का असली मकसद शायद दुनिया को खुश करने से पहले खुद के भीतर के शोर को शांत करना है।
वाकई, लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि अगर संगीत उनके लिए खुद को हील करने का इतना पर्सनल और रिलैक्सिंग तरीका है,
तो फिर वो दबाव वाले प्रोफेशनल माहौल में कैसे काम करती हैं?
यही सबसे बड़ा सवाल है
और यही मुझे सबसे ज्यादा हैरान भी करता है। जैसे वो संगीत नाटक अकादमी वाला किस्सा ले लीजिए।
हाँ, वो 10 मिनट वाला चैलेंज।
बिल्कुल,
स्रोत के अनुसार उन्हें वहाँ सिर्फ 10 मिनट में एक गजल कम्पोज करके गाने को कहा गया था।
जी,
पर सच कहूँ तो क्या 10 मिनट में सच में कुछ नया रचा जा सकता है, या ये दबाव में बस कुछ पुरानी धुनों को इधर उधर जोड़ देने जैसा था?
देखिए, ये डाउट आना तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन यहीं पर उनका क्लासिकल बेस काम आता है। पता है उन्होंने क्या किया? कमरा बंद किया, तानपुरा सेट किया और 10 मिनट में एक नई रचना तैयार कर दी।
अरे वाह!
और इसी से उनका सिलेक्शन भी हुआ। इसका कारण यह है कि क्लासिकल संगीत ना एक बहुत ही सख्त गणितीय ढांचा या फ्रेमवर्क होता है।
अच्छा, तो मतलब वो कोई तुक्का नहीं था?
बिल्कुल नहीं। जब आपकी बुनियादी शिक्षा इतनी मजबूत हो तो आपके पास सुरों की एक पूरी डिक्शनरी होती है।
तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी मास्टर शेफ को 10 मिनट में एक सिग्नेचर डिश बनाने को कह दिया जाए।
क्या बात है, एकदम सटीक तुलना है ये।
क्योंकि उन्हें मसालों के फ्लेवर और उनके पीछे की केमिस्ट्री गहराई से पता है, तो वो दबाव में भी खरोच से कुछ बेहतरीन बना ही सकते हैं।
एकदम सही कहा आपने, और यही मजबूत बेस या बुनियाद तब सबसे बड़ी ढाल बनती है जब एक कलाकार अलग अलग माहौल में परफॉर्म करता है,
खासकर स्टेज और स्टूडियो के बीच, क्योंकि दोनों का माहौल एकदम अलग होता है।
बिल्कुल, तनुश्री का मानना है कि ऑडियंस के सामने यानी स्टेज पर चुनौतियां असल में कम होती हैं।
ये मुझे थोड़ा अजीब लगा था पढ़ने में, मतलब हजारों लोगों के सामने गाना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है?
वो इसलिए क्योंकि वहाँ एक फ्लो होता है।
अच्छा,
दर्शकों की ऊर्जा होती है जो आपको खुद ब खुद आगे ले जाती है।
हाँ, शायद स्टेज पर गाना एक खुले मैदान में दौड़ने जैसा है जहाँ सब कुछ स्वाभाविक लगता है,
और अगर वहाँ कोई छोटी गलती हो भी जाए ना तो वो उस प्रवाह में छुप जाती है।
लेकिन स्टूडियो में ऐसा नहीं होता,
क्योंकि स्टूडियो में कोई दर्शक नहीं है।
बिल्कुल, वहाँ फ्लो नहीं, वहाँ कंट्रोल चाहिए होता है।
समझ गई, यानी स्टूडियो में गाना खुद को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जांचने जैसा है।
एकदम सही, क्योंकि वहाँ कोई माहौल या दर्शकों का शोर नहीं है, तो आपकी सांस लेने की आवाज या एक हल्का सा भी बेसुरापन छिप नहीं सकता। आपको अपनी आवाज के हर एक कण पर 100% कंट्रोल चाहिए होता है।
और यही कारण है कि तनुश्री संगीत को कोई ट्रेंड नहीं मानती, उनके लिए ये पूरी तरह से एक साधना है।
तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो तनुश्री मिश्रा की यात्रा बनारस के घाटों के सुकून और हीलिंग से शुरू होकर
संगीत नाटक अकादमी के कड़े अनुशासन तक जाती है,
हाँ, और फिर स्टूडियो के 100% कंट्रोल तक पहुंचती है। ये पूरी यात्रा वाकई एक गहरी साधना है।
और यही साधना ना, ये तय करती है कि कौन सी आवाज सिर्फ कुछ दिनों के लिए ट्रेंडिंग रहेगी और कौन सी आवाज समय के साथ टाइमलेस बन जाएगी,
बिल्कुल शाश्वत बन जाएगी।
हाँ।
तो इसी से जुड़ा एक विचार छोड़कर जाते हैं।
जी बिल्कुल।
आज के इस दौर में जहाँ हर कोई कुछ ही सेकेंड की रील बनाकर रातों रात वायरल होना चाहता है
शॉर्टकट के जरिए,
हाँ? तो क्या संगीत जगत में उन आवाजों को पर्याप्त महत्व और जगह मिल पा रही है जो शॉर्टकट्स की बजाय साधना का ये कठिन और लंबा रास्ता चुनती हैं?
ये वाकई में एक बहुत गहरा सवाल है।
बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।